समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:30 और नववर्ष 2025 के आज दूसरे दिन की नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे का। और आज सवेरे के संघ में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में अनीता आनंद। अनीता, स्वागत है आपका भी।
थैंक यू निखिल, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग Daily News Magazine Aaj Savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 2nd of January. So let's begin with the headlines first. Again, 40 years after the Bhopal gas tragedy, the shifting of some 377 tons of hazardous waste began from the defunct Union Carbide factory last night for its disposal. The toxic waste is being shifted in 12 sealed container trucks to the Pitampur industrial area in Dhar district, 250 kilometers away from Bhopal. 12 container trucks carrying the waste set off on a non-stop journey around 9 p.m. Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department Director Swatantra Kumar Singh said that the green corridor was created for the vehicles transporting the hazardous waste. He said around 100 people worked in 30-minute shifts since Sunday to pack the load and waste in the trucks. Initially, some of the waste will be burnt at the waste disposal unit in Pitampur, and the residue, that is ash, will be examined to find whether any harmful elements are still left, Singh said. The smoke from the incinerator will pass through special four-layer filters so that the surrounding air is not polluted, he said. Highly toxic methyl isocyanate, MIC, gas leaked from the Union Carbide pesticide factory on the intervening night of December 2 and 3, 1984, killing at least 5,479 people and leaving thousands with serious and long-lasting health issues. It is considered to be among the worst industrial disasters in the world. Madhya Pradesh High Court on December 3 rebuked authorities for not clearing the Union Carbide site in Bhopal despite directions from the Supreme Court and set a four-week deadline to shift the waste.
ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची आज से भारत की दो दिन की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे आज और कल नई दिल्ली में ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर की बैठक में भाग लेंगे। भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर सुदृढ़ हुए हैं। वर्ष 2003 में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते से इन संबंधों को औपचारिक स्वरूप मिला था। ये साझेदारी विशेष रूप से ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में विकसित हुई और वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार $17.5 अरब तक पहुंच गया।
The total gross goods and services tax, GST collections grew 7.3% to over 1.76 lakh crore rupees last month as compared to December 2023. The total gross GST revenue in December 2023 was 1.64 lakh crore rupees. The central GST collection in December stood at 32,836 crore rupees and state GST is at 40,499 crore rupees. The integrated IGST collected amounts to 47,783 crore rupees and cess is at around 11,471 crores. In November last year, gross GST collection had grown 8.5% to over 1.82 lakh crore rupees.
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के देश के प्रयासों को सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% की कमी आई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को सौंपे गए डेटा के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद ने वर्ष 2005 से 2020 के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आधिक्य में 36% की कमी रही है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि प्रारूप को भेजी गई चौथी द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कुल राष्ट्रीय उत्सर्जन 295.90 करोड़ कार्बन के बराबर रहा। हालांकि वर्ष 1994 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अब भी 98.34% अधिक है। भारत अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2030 तक इसमें 45% की कमी लाने और गैर जीवाश्म ईंधन से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। ऊर्जा उत्पादन, कृषि और उद्योगों से बड़े पैमाने पर गैस उत्सर्जन के बीच भारत पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के साथ साथ विकास की गति बनाए रखने के प्रयास कर रहा है।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल प्रिसाइड ओवर अ बुक रिलीज फंक्शन इन न्यू दिल्ली टुडे एज अ चीफ गेस्ट। Union Education Minister Dharmendra Pradhan will be the guest of honor. Eminent authors, academicians, officials of the ministry and other dignitaries will also be present at the event. The book titled Jammu Kashmir and Ladakh Through the Ages seeks to present the story of Jammu Kashmir and Ladakh. It is presented in 7 sections that cover over 3,000 years of the region's history. Published in Hindi and English, this book is the result of collaborative efforts of the National Book Trust India and Indian Council of Historical Research.
गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। सीधे वेबसाइट amantran.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट लिए जा सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की बिक्री की कीमत 20 रूपये से लेकर 100 रूपये तक और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रूपये होगी।
In the United States, a man in a pickup truck deliberately drove into a crowd in New Orleans, French Quarter, early on New Year's Day, killing at least 15 people and injuring 35 others. Authorities are investigating the incident as a terrorist attack. The suspect, identified as 42-year-old Shamsuddin Bahar Jabbar, was killed in a shootout with police after exiting the vehicle armed with an assault rifle. Two officers were injured in the exchange but are in stable condition. The attack occurred at the intersection of Canal and Bourbon streets where Jabbar bypassed barricades, fired into the crowd and drove into pedestrians. According to reports, Jabbar served in the US Army until January 2015 and in the Army Reserve until July 2020. Investigators are searching for explosive devices and additional suspects. A black flag displayed on the truck is being examined for links to ISIS or other foreign terror organizations. President Joe Biden condemned the attack, extended condolences to the victims' families and pledged federal support for the investigation and recovery efforts, emphasizing that there is no justification for violence of any kind.
ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में कल हॉकी इंडिया लीग के दूसरे मैच में शाची राहड़ बंगाल टाइगर्स ने टीम गोनासिका को 2-1 से मात दी। रूपेंद्र पाल सिंह ने बंगाल टाइगर्स के लिए 2 गोल किए और बंगाल टाइगर्स के लिए लगातार दूसरी जीत तथा प्रतियोगिता में शुरूआती बढ़त सुनिश्चित की।
इन वुमेन्स फुटबॉल, इंडिया विल फेस द मालदीव्स इन द सेकेंड ऑफ द 2 फीफा इंटरनेशनल फ्रेंडलीज दिस आफ्टरनून एट द पादुकोण ट्रावेड सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस इन बेंगलुरु। The match is set to kick off at 3:30 PM IST. India dominated the first match with an impressive 14-0 victory. Manager Joachim Alexanderson has made 6 changes to the 23-player squad for today's game.
और श्रोताओं, अब समय है प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो अनीता, कहां से शुरू कर रहे हैं हम?
चेन्नई। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड फी स्ट्रक्चर फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स अबाउट इनकंसिस्टेंट चार्जेस अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स। दिस फॉलोज इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेल्फ सर्टिफिकेशन प्लान फॉर स्मॉलर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट। इन जुलाई द गवर्नमेंट हैड अनवेल्ड अ सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम aimed at reducing a procedural hurdles for constructing smaller residential buildings. This applies to single or double-storey residential buildings with a built-up area of up to 3,500 square feet or plots not exceeding 2,500 square feet. Earlier this month, a government order rationalized building plan approval fees under a single category for various types of developments. The Greater Chennai Corporation cleared 70 tons of waste from 1,363 bus shelters during the second phase of its cleaning campaign. The drive focused on prime shelters in the arterial roads of Chennai. The corporation also removed 120 illegal banners. The campaign also targeted 25 garbage hotspots to remove waste dumped on New Year's night. About 20 tons of waste were removed from bus shelters and 120 damages were identified. The mass cleaning initiative was first launched on 21st of August last year with the goal of maintaining hygiene and improving public amenities. During the drive, 21.85 tons of garbage and 17 tons of construction debris were removed. Approximately 4,000 posters and more than 5,000 bus shelter seats have been removed. And now for news from Delhi. Over to Nikhil.
जी हां, दिल्ली के सभी 7 भाजपा सांसदों ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट करके उन्हें 4 नई परियोजनाओं का मांग पत्र प्रस्ताव दिया है। सभी सांसदों ने कहा है कि राजधानी के खतरनाक प्रदूषण और बढ़ती भीड़भाड़ तथा जाम को कम करने में ये 4 परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है और भीड़भाड़ के कारण लोगों का समय तथा ईंधन बर्बाद होता है। इस दौरान सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह मिधोड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज भी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में मतदाता पंजीकरण और सूची में संशोधन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मतदाता सूची में संशोधन और नए नाम जोड़ने का काम भी जारी है। इसके लिए इच्छुक नागरिक 6 जनवरी तक फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह के संशोधन के लिए या फिर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योग्यता संवर्धन योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। यह योजना किसी भी आयु के शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के विभागों और कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों के नियमित विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी तक विश्वविद्यालय के पोर्टल और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में मुख्य पाइपलाइन को अन्य पाइपलाइनों से जोड़ने के कार्य के चलते कई इलाकों में कल और शनिवार को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इन क्षेत्रों में रोहिणी सेक्टर 7, 8, 9, 11, 13, 22, 23 और 25, मधुबन चौक, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, पश्चिम विहार, मेजर भूपेन्द्र सिंह नगर, महावीर नगर, कृष्णा पार्क और जनकपुरी तथा इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में कल नववर्ष 2025 का स्वागत धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हुए किया गया। पूरे शहर में उत्सव के माहौल को देखते हुए लोगों की सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और राजधानी के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित विशेष प्रबंध भी किए गए। इस बीच दिल्ली में शीतलहर के चलते दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कल कुख्यात नक्सली नेता तर्रका समेत 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों को सामान्य जीवन जीने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल इलाके के दुर्गम गांव अहेरी से गढ़देवाड़ा तक बस सेवा और छत्तीसगढ़ की सीमा को जोड़ने वाले पेनगुंडा में चेकपोस्ट का भी उद्घाटन किया। शहर और औद्योगिक विकास निगम सिडको ने माई प्रेफर्ड सिडको होम आवास योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना नवी मुंबई के अलग अलग इलाकों में 26,000 घरों की पेशकश करती है, जिनमें वाशी, बामन डोंगरी, खरकोपर, घारघर, तलोजा, मानसरोवर, खंडेश्वर, पनवेल और कलमबोली शामिल हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की समय सीमा अब 10 जनवरी 2025 तक तय कर दी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं, जो मार्च में शुरू होंगी। इन परीक्षाओं में करीब 1,38,000 विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए 439 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कहा कि अस्थायी प्रवेश पत्र, इन परीक्षाओं का विवरण, विषय, सीट संख्या सहित अन्य सभी जानकारी कॉलेजों के लॉगिन में उपलब्ध हैं।
And talking about Bangalore, Brihad Bengaluru Mahanagar Palika cleared 15 metric tons of garbage from MG Road area where lakhs of revelers gathered to celebrate New Year yesterday. The municipal corporation workers cleared the litter last morning in the central business district covering MG Road, Brigade Road, Church Street, Residency Road, Richmond Road, St. Mark's Road and Kasturba Road. The cleanliness drive by over 70 workers using 25 auto tippers and 3 compactors was carried out between 3 a.m. and 7 a.m. to make roads operational again. They cleared plastic waste, footwear, liquor bottles and other disposables on this occasion. The waste was segregated and 3 tons of recyclable waste was sent for recycling. And talking about Telangana, the state government has decided to extend the metro rail to Medjool and Shamirpet. Once completed, it will provide metro rail services to the extended suburban locations of Hyderabad for about 22 to 23 kilometers from the city. Chief Minister A. Revanth Reddy asked the officials to prepare a detailed project report, DPR. There has been a demand from the citizens for extending metro services to these 2 suburbs and the Chief Minister finally gave the green signal. The Chief Minister asked the Metro Rail authorities to submit the DPR as part of Phase 2B works so that the state government can obtain necessary approvals from the centre. It may be mentioned here that the people living in the northern part of the city have been demanding metro services and have even held protest on several occasions. Hyderabad Metro Rail Limited HMRL Managing Director NVS Reddy informed that the State Chief Minister has directed that Phase 2 should be divided into 2 parts, which include Phase 2A and Phase 2B. Part A of Phase 2 of the Hyderabad Metro expansion will see the establishment of 5 corridors spanning 76.4 kilometers across 54 stations at over 24,000 crore rupees. The DPR for Part A of Phase 2 has already been prepared and for Phase 2B, the DPRs and other related documents will be ready within 3 months. The Phase 2 project is joint venture project of the Government of Telangana and the Government of India. And now for news from Kolkata. Over to Nikhil.
जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू खरीफ सीजन के पहले 2 महीनों में किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में धान खरीदा है। पिछले खरीफ सीजन की नवंबर दिसंबर के मुकाबले धान की खरीद दोगुनी हो गई है। 8,39,000 किसानों से कुल 26,69,000 टन धान खरीदा जा चुका है। 2024-25 खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद नवम्बर 2024 में शुरू हुई थी और ये सितम्बर 2025 तक जारी रहेगी। तो ये थी महानगरों से जुड़ी अब तक की प्रमुख खबरें। और अनीता, हम लेते हैं हाल मौसम। तो दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी का जो मौसम, अगर हम बताएं अपने श्रोताओं को, तो हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान आज दिन के समय 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो आसमान आज साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उधर कोलकाता में भी आसमान आज साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और यह अधिकतम आज 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। तो अनीता, अन्य महानगरों में मौसम आज कैसा रहेगा?
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग एंड मिस्ड इन द मॉर्निंग एंड अ पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 16 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी sky with the haze. The temperature will hover between a minimum of 17 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और आप सभी को उन घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की थी। आज है वर्ष 2025 का दूसरा दिन यानी कि 2 जनवरी। तो 2 जनवरी के लिए कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं अनीता थी जिनसे हम सभी का रास्ता हम श्रोताओं को अपने बताएं?
जी, वी बिगिन विद द ईयर 1492, ग्रेनाडा रिक्लेम्ड बाय स्पेन, रिकॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन ऑन दिस डे 1942, ग्रेनाडा होम ऑफ द अलम्ब्रा पैलेस एंड द सीट एंड फाइनल स्ट्रांग होल्ड ऑफ द मोरिश किंगडम इन स्पेन वॉज सरेंडर्ड टू द कैथोलिक मोनार्क्स फर्डिनेंड II एंड इजाबेला I, एंडिंग द रिकॉन्क्वेस्ट। एंड इन द ईयर 1733, when a group of British debtors led by English philanthropist James E. Oglethorpe travelled up the Savannah River and established Georgia's first permanent settlement, the town of Savannah.
वर्ष 1757 में आज के दिन ही रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कोलकाता को वापस छीना था.
एंड इन द ईयर 1788 जॉर्जिया बिकेम द फोर्थ स्टेट टू रेटिफाई द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन नेम्ड आफ्टर किंग जॉर्ज द सेकेंड.
वर्ष 1899 में आज का ही वो दिन था जब रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कोलकाता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे थे.
एंड इन द ईयर 1905 निखिल द रशियन सरेंडर्ड पोर्ट आर्थर लेटर लोशोन चाइना टू द जापानीज इन द रशियो जापानीज वॉर.
वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज के दिन जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया था. वर्ष 1954 में आज के दिन ही पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की गई थी. भारत रत्न पुरस्कार भी आज के दिन ही 1954 में शुरू किया गया था.
एंड इन द सेम ईयर दैट इज 1954 इंस्टीट्यूशन ऑफ भारत रत्न लाइक ह्यूमन स्ट्रेंथ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन पोजिशन और जेंडर वॉज इंस्टीट्यूटेड. द अवार्ड वॉज इस्टेब्लिश बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद. And in the year 1959, the first lunar space shot, the unmanned Luna 1, was launched by the Soviet Union. It passed within 4,600 miles of the moon before moving onto a solar orbit.
वर्ष 1973 में आज के दिन ही जनरल एस एफ ए जे मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया.
एंड इन द ईयर 2004 नासा स्पेस क्राफ्ट स्टारडस्ट कलेक्टेड डस्ट ग्रेन्स फ्रॉम द कॉमेट वाइल्ड 2 एंड द कॉमेटरी मटेरियल वॉज लेटर रिवील्ड टू कंटेन द अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ.
वर्ष 2008 में आज के दिन ही चिली का दक्षिणी लाइमा ज्वालामुखी फटा था और वर्ष 2009 में आज के दिन ही भारत के सौरभ घोषाल स्क्वैश रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे.
जी
और अब समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का, अपने श्रोताओं को उन व्यक्तियों के बारे में बताने का जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या फिर जन्मदिन है. तो सबसे पहले श्रोताओं को बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं विट्ठल रामजी शिंदे को. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध और बड़े समाज सुधारकों में से एक थे. उनका सबसे बड़ा योगदान अस्पृश्यता को मिटाना, दलित वर्ग को बराबरी पर लाना था. ये विट्ठल रामजी शिंदे ही थे जिनके प्रयासों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अस्पृश्यता के प्रश्न का अपने राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करना पड़ा था. वर्ष 1903 में इंग्लैंड से लौटने के बाद मुंबई में विट्ठल रामजी शिंदे ने यंग थीस्ट यूनियन संस्था स्थापित की थी. ये संस्था सदस्यों के लिए ये बात करती थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो जाति पाति में विश्वास करता हो और उन लोगों से घृणा करता हो जिन्हें ऐसा अच्छा न समझा जाता हो. वे प्रार्थना समाज में भी रहे और बाकी के दिनों में उन्होंने लोगों के साथ में उन बातों को पहुंचाने का विचार किया कि लोगों को अछूत न समझा जाए और इसीलिए उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने रात्रि स्कूल भी खोला था वर्ष 1905 में. इस तरह से कई सामाजिक और धार्मिक सुधार के कार्य उन्होंने किए थे.
एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ ग्यूचियो जियोवान बतिस्ता जेसेंटो डारियो मारियो गुची. The short form and the popular brand name being Gucci, he passed away on this day in 1953, the Italian businessman and fashion designer and founder of the fashion house Gucci. He founded the house of Gucci in Florence as a small family-owned leather shop. He began selling saddles, leather bags and other accessories to horsemen in 1920s. During the 30s, League of Nations sanctions on Italy, which led to leather shortages, he innovated by developing a specially woven hemp fabric from Naples. In 1938, Gucci expanded his business to a second location in Rome at the insistence of his elder son. His one-man business eventually turned into a family business when his sons joined the company. In 1947, responding to a post-war material scarcity, Gucci created the bamboo bag using lightweight bamboo for handles, which became one of the brand's signature designs. In the year 1951, Gucci opened their store in Milan. He wanted to keep the business small, and for nearly entirety of his life, the company remained in Italy.
आज ही हम याद कर रहे हैं अन्ना राम सुदामा को. आज उनकी भी पुण्यतिथि है. वे राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार थे. सुदामा ने राजस्थानी और हिंदी में उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य और अन्य विधाओं में 25 पुस्तकें लिखी हैं. इनका साहित्य अन्ना सुदामा समग्र के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अकादमियों और संस्थाओं की ओर से उन्हें 11 पुरस्कार दिए गए हैं और आपको बता दें कि उनकी कई सारी साहित्यिक रचनाएं अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। आपको यह भी बता दें कि राजस्थानी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में जिन महान रचनाकारों का योगदान माना जाता है उनमें अन्ना राम सुदामा का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उनकी प्रमुख रचना मेवेरा रुख को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था।
Today is also the death anniversary of Lillian Evelyn Gilbreth, the American psychologist, industrial engineer, consultant and educator who was an early pioneer in applied psychology to time and end motion studies. She was described in 1940s as a genius in the art of living. Gilbreth, one of the first female engineers to earn a PhD, is considered to be one of the first industrial organizational psychologist. She and her husband Frank Bunker Gilbreth were efficiency experts who contributed to the study of industrial engineering, especially in the areas of motion study and human factors.
आज ही पुण्यतिथि है रमाकांत आचरेकर की। वे जाने माने क्रिकेट कोच थे और मुंबई के शिवाजी पार्क में युवा क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दिया करते थे। सचिन तेंदुलकर के अलावा रमाकांत आचरेकर विनोद कांबली, प्रवीण आमरे, समीर दिघे और बलविंदर सिंह संधू के भी कोच रहे। भारत सरकार ने उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया था और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रॉजर डीन मिलर सीनियर, the American singer-songwriter widely known for his honky-tonk influenced novelty songs and its chart-topping country hits like King of the Road, Dang Me and England Swings. After growing up in Oklahoma and serving in the U.S. Army, Miller began his musical career as a songwriter in the late 1950s, writing such hits as Billy Bayou and Home for Jim Reeves and Invitation to the Blues for Ray Price. He later began his recording career and reached the peak of his fame in mid-1960s, continuing to record a tour into the 1990s, charting his final top 20 country hit, Old Friends, with Price and Willie Nelson in 1982. I'm playing a snippet from King of the Road by Roger Dean Miller Sr.
Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, ah, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man.
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है राजेंद्र शाह की। वे गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार थे और उन्हें 2001 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और आपको बता दें कि उनका पहला संग्रह 1933 में शुरू हुआ था और 18 वर्ष बाद अपनी कविता के पहले प्रकाशन के माध्यम से वे और भी लोकप्रिय हुए थे। आज ही हम याद कर रहे हैं वसंत गोवारिकर को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 1984 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उनके खास योगदानों में आपको बता दें, मॉनसून की सटीक भविष्यवाणी के लिए पहले स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान मॉडल का विकास उन्होंने किया था। आज ही हम याद कर रहे हैं अनवर जलालपुरी को। वे यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर रहे। उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथ श्रीमद भागवत गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था।
एंड टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ चंद्रशेखर बसन्ना वेप्पा, अ प्रोमिनेंट इंडियन पोएट, प्ले राइट, फोकलोरिस्ट, फिल्म डायरेक्टर इन कन्नडा लैंग्वेज एंड द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ कन्नड यूनिवर्सिटी इन हम्पी, ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द साहित्य अकादमी, कंट्रीज प्रीमियर लिटरी इंस्टीट्यूशन आफ्टर विनायक कृष्ण गोकक इन 1983 एंड यू आर अनंत मूर्ति इन 1993. इज नोन फॉर इफेक्टिव एडेप्टेशन ऑफ द नॉर्थ कर्नाटका डायलेक्ट ऑफ द कन्नड लैंग्वेज इन हिज प्लेज एंड पोएम्स इन सिमिलर स्टाइल एज इन द वर्क्स ऑफ डॉक्टर of D.R. Bendre. Kambara's plays mainly resolve around folk or mythology interlinked with contemporary issues, inculcating modern lifestyle with his hard-hitting poems. He's got the Padma Bhushan in 2021, Gyanpeeth in 2011, and Sahitya Academy Award Padma Shri by the Government of India, and Kabir Saman also.
और आपको बता दें श्रोताओं, आज जयंती है जैनेन्द्र कुमार की। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी उपन्यास के इतिहास में उनकी परंपरा को एक प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं में आपको बता दें कि नीलम देश की राजकन्या, एक रात और दो चिड़िया रही हैं और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, अब आपसे और भी ज्यादा बात करने का समय नहीं बचा, तो इजाजत दीजिए निखिल और अनीता को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।